الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
Recording in progress.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سیٹرڈے کی کلاسز میں سے ہماری آخری کلاس جو ہوتی ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر ہوتی ہے، سیرت الصحابہ. اور اس میں ہم خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اس کو بڑھا کر کے عشرہ مبشرہ کے تذکرے کے اوپر آ چکے تھے، اور اس میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پچھلی کلاس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے شروع کر لیا تھا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہم نے کتنے عشرہ مبشرہ کر لیے، یہ کون سے نمبر کے تھے؟
ये आठवें नंबर की है साफ
یہ آٹھویں نمبر پہ ہیں، اور ان کے بعد پھر دو اور رہ جائیں گے، 9 اور 10. تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں ہم نے سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتائی تھی، وہ کسی کو یاد ہے کہ ہم نے شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہی تھی؟ نوٹ سامنے رکھیں دیکھ سکتے ہیں، نوٹس کے اندر اگر لکھے ہوں گے تو دیکھ سکتے ہوں گے. جی
نمبر 3 7 کے بات کی تھی
ہاں ماشاء اللہ، بالکل یہی بات میرے ذہن میں بھی تھی کہ ہم نے تین سعدین، بلکہ سعدین نہیں تو تین سلاس سلاس سعد ہیں، سعد ان کے بارے میں بات کری تھی کہ جو مشہور سعد ہیں نا وہ تین ہیں، بہت زیادہ مشہور صحابہ. ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. یے دونوں انصاری صحابہ تھے، اور دونوں اپنے اپنے اوس اور خزرج قبیلے کے سرداروں میں سے ہوتے تھے. اور ایک جو ہے وہ قریشی صحابہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، پھر ان کے شجرے کے بارے میں بھی تھوڑی بات ہوئی تھی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموزاد لگتے تھے، ماموزاد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ یہ سعد رضی اللہ عنہ کے والد کی کیا تھی، چچا زاد بہن تھی، فرسٹ کزن تھی. ٹھیک ہے، تو کزن کے اعتبار سے بھی پھر ماموں کہلاتے تھے، لیکن ماموں کیسے کہ عمر میں بھی چھوٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں چھوٹے. کچھ ہوتے ہیں نا ماموں کہ بھانجے جو ہوتے ہیں وہ تو جوان ہو جاتے ہیں اور ماموں ابھی پیدا ہو رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. تو سعدتان جو ہے وہ چھوٹے تھے عمر میں، بہت زیادہ چھوٹے نہیں تھے لیکن چھوٹے تھے. اچھا، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، قریش میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی، علی رضی اللہ بھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. پھر یہ جو مسلمان ہونے کی ترتیب میں، یہ آزاد اور بالغ لوگوں میں ان کا نمبر تیسرا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آزاد تھیں، بالغ تھیں آف کورس، اور حضرت ابوبکر صدیق رضان وہ بھی آزاد تھے، بالغ تھے، اور تیسرے نمبر پر یہ تھے. ورنہ علی رضان جو تھے وہ بھی آزاد تھے لیکن وہ بالغ نہیں ہوئے تھے جب وہ مسلمان ان سے پہلے ہو گئے تھے. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بالغ تھے لیکن وہ آزاد نہیں تھے، وہ غلاموں میں آتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آزاد اور بالغ میں یہ تیسرے نمبر پر تھے، اور ان کے مسلمان ہونے کے 7 دن تک پھر مزید کسی آزاد اور بالغ شخص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نا جو غلام اور باندیاں ہوتی تھیں نا وہ تو بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے، ان کی تعداد اچھی خاصی تھی جو غلام ہوتے تھے، جو باندیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ چونکہ چھپ چھپ کر کے مسلمان ہوتے تھے، بہت خوف ڈر ہوتا تھا کہ ان کو ان کے آقا جو ہیں جو ان کا مالک ہوتا تھا وہ قتل کر دے گا یا بہت اذیتیں دے گا، तो उनका इतना ज्यादा मशहूर नहीं है, अगरचे के है सहाबा की जो तस्करे की किताबें होती हैं उनमें उनके भी नाम मौजूद हैं, लेकिन आम लोगों को उनके नाम आमतौर पर पता नहीं होते। तो ज्यादा मशहूर जो है फिर यही लोग होते हैं जो कि आजाद भी थे, जो बालिग भी थे। ठीक है, तो अब 7 दिन तक, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुसलमान नहीं हुआ 7 दिन तक। हो सकता है कोई बांदी मुसलमान हो गए होंगी, कोई दूसरे गुलाम मुसलमान हो गए होंगे, लेकिन कोई आजाद और बालिग शख्स जो है वो इनके मुसलमान होने के 7 दिन के बाद तक मुसलमान नहीं हुए थे। वो वाकया भी शायद हमने पढ़ लिया था, मुझे याद नहीं है, कि इन्होंने ख्वाब देखा था कि जिसमें एक चांद को देखा और अपने आप को देखा कि वो अंधेरों के अंदर, समंदर के अंदर गोया कि डूब रहे हैं। तो इन्होंने चांद की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करी तो देखा कि पहले से वहां पे कुछ लोग मौजूद हैं। तो वो जो लोग मौजूद थे उनकी इन्होंने शक्लें पहचान ली, कि अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, अली रतन मौजूद हैं, जैद बिन हारिसा मौजूद हैं, लेकिन चांद को नहीं पहचाना, क्योंकि चांद तो चांद था। तो इनको ये नहीं पता चला कि चांद से क्या मुराद है। तो वो इनको बाद में पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम मुराद थे, जब अबू बकर सिद्दीक ने इनको नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, लेकर के गए, तब पता चला कि अच्छा चांद जो है ना वो तो नबी अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, तो अक्सर ख्वाब ख्वाब के अंदर जब नबी अलैहिस्सलाम को लोग देखा करते थे तो वो चांद की शक्ल में भी, ठीक है, जैसे कि हजरत जुवैरिया रज़ी ताला अन्हा मुसलमान होने से पहले उन्होंने भी ख्वाब देखा था कि आसमान से चांद जो है ना वो आ करके उनकी गोद में गिर गया। ठीक है, तो उन्होंने जब अपने वालिद को, जो कि यहूद कौम के सरदार थे, उनको बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो बल्कि नहीं, अपने शौहर को बताया जो कि कबीले के सरदार के बेटे थे, तो उन्होंने तो थप्पड़ मार दिया ना इनको, अच्छा तुम ये ख्वाब देखे, क्योंकि इन लोगों को तो सब पता था ना कि चांद से मुराद कौन हो सकता है। यहूदी तो आलिम थे और यहूदियों को तो ये सारा इल्म मौजूद था, उनको पता था कि चांद को ख्वाब में देखने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखा है। तो उसने गुस्से में आकर के उनको थप्पड़ मारा, अच्छा तो तुम जो है वो मुसलमानों के नबी के ख्वाब देख रही हो, उसका मतलब है। ठीक है, इतना इन लोगों को इल्म था। फिर अल्लाह ताला ने उनको नबी अलैहिस्सलाम के हरम में भी पहुंचा दिया और वो ख्वाब सच्चा हो गया। बहरहाल, तो इस तरह से इनका कबूल इस्लाम हुआ और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ही अल्लाह ताला ने वास्ता बनाया कि वो इनको नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर के गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज्जियात की एक घाटी के अंदर लोगों को वहां तशरीफ फरमा थे। अच्छा, वालिदा का रद्द अमल भी ये पढ़ लिया था, ये हमें याद है कि लड्डू हार वगैरह का जो तस्कर अक्सर होता रहता है, कि जब आप मुसलमान होते थे तो लोग आपको लड्डू वड्डू नहीं खिलाते थे, हार वार नहीं पहनाते थे, बल्कि दुश्मन हो जाते थे और मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इनके साथ भी ऐसे ही हुआ और इनके अपनी अम्मी ही इनके बहुत ज्यादा खिलाफ हो गई, लेकिन इनके फिर इस इस्तकामत के ऊपर कि बेशक वालदा खिलाफ हो गई थी और ऐसा उन्होंने कह दिया था कि अगर तुम इस्लाम को छोड़ोगे नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था। तो इन्होंने पहले तो उनको समझाया समझाया कि भाई ये छोड़ दें, ये क्या आप कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तो इन्होंने कहा कि अगर आपके जिस्म में 1,000 जाने भी हों और एक एक करके 1,000 जाने भी निकल जाए ना, मैं फिर भी इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि हक को ये पहचान चुके थे और जान चुके थे कि ये इससे ज्यादा कीमती चीज और कोई भी नहीं है। तो उनके इस इस्तकामत के ऊपर अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई, फरमाया कि व इन जाहदा का अला अन तुश्रिक बी मा लैस लका बिही इल्म, के अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन दोनों के दोनों जाहदा, तस्निया का सीगा, अगर वो दोनों के दोनों तुमको प्रेशराइज करें कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक बनाओ, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराओ, शिर्क करो, ठीक है, मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज का उनको इल्म नहीं है। अब ये एक बड़ी अजीब, कुरान मजीद में ना जगह जगह इस तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस चीज का उनको इल्म नहीं है वो ये काम करें, या ये कि जब उनको इल्म पहुंच चुका तब उन्होंने ये बात करी, फिर भी वो ये बात करते हैं हालांकि उन तक इन पहुंच गया। तो इसका क्या मतलब है, कोई इसका मतलब अगर बताए कि ये अल्लाह ताला तारा जो कहते हैं कि ऐसी चीज को मेरे साथ शरीक करते हैं जिसका इनके पास इल्म नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि अगर किसी ऐसी चीज को मेरे साथ शरीक करें जिसका इनके पास इल्म है तो वह ठीक है, नाउजुल्ला के इन तक इल्म पहुंच गया कि हाँ भाई ये चीज नाउजुल्ला, ये चीज अल्लाह ताला का पार्टनर है, ये अल्लाह ताला की पार्टनर है, तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो शिरक कर। लेकिन जिस चीज का इल्म को इल्म नहीं पहुंचा तो उसको ये क्यों शरीक ठहराते हैं, क्या ये इसका ये मतलब है, फिर इसका क्या होता है? जी
तो उनको जो है वो इस बात का इल्म पहुंचेगा ही नहीं कि अल्लाह अल्लाह ताला की तरह कोई और भी जो है वो हमें नऊज़ुबिल्लाह जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करता है या कोई और जो है खुदा है, क्योंकि जो इन्होंने आइडल्स बनाए हुए थे फिजिकली तो कुछ भी नहीं करते थे वो, बस वो मतलब ना नफ़ा पहुँचा सकते थे ना ज़रर पहुँचा सकते थे और ना कहीं उनको इल्म ये पहुँच सकता था कि किसी और ने किया है ये काम, तो मतलब
सही।
कहते
और कोई कुछ और कहना चाहते थे, किसी ने हाथ उठाया था?
हैं कि इनको इनको पता ही नहीं, इनको इल्म उस लेवल का हो ही नहीं सकता जिस पे ये डिसाइड कर सकें कि ऐसा कि कोई और अल्लाह ताला इनके ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इम्पॉसिबल सी चीज के बारे में इनका इल्म इतना छोटा है कि उस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए इनको इल्म नहीं है इस बारे में।
अच्छा, संडे का बयान किसी ने सुना था? आप लोग तो यहाँ ऑनलाइन शायद तो फिजिकली संडे के बयान में अब्रार भाई मौजूद था। संडे के बयान में भी इस टॉपिक पे बात हुई थी, थोड़ी सी शिरक के ऊपर बात नहीं हुई थी लेकिन किसी और रेलेवेंट बात, इल्म क्या होता है, इल्म क्या होता है कि जिसकी आपके पास एविडेंस हो, प्रूफ हो, दलील हो, ठीक है, जिस चीज के आपके पास दलील नहीं है वो इल्म होता ही नहीं, ठीक है, जिस चीज के आपके पास कोई दलील नहीं है, चाहे नकली दलील हो चाहे अकली दलील हो, आपके पास ना अकली दलील है ना आपके पास नकली दलील है, वो तो इल्म है ही नहीं, ठीक है, वो तो फिर एक सुनी सुनाई बात है ना, एक अजम्पशन है ना कि हाँ भाई किसी बेवकूफ से सुन लिया आपने, अब बेवकूफ से कोई बात सुन लेना इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई सच बात कह रहा है, झूठा इंसान है, वो कोई बात बोल दे तो आप कहेंगे हाँ मैंने चूंकि उस शख्स से सुना था तो इस वजह से ऐसे ही होगा, भाई वो तो झूठा इंसान है, झूठे इंसान का क्या कि क्या उसको क्या ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको तो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो इल्म तो वही होता है जिसकी दलील हो, यानी वो चीज एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, अल्लाह ताला का कोई पार्टनर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई है ही नहीं पार्टनर, तो अल्लाह ताला अपने कंप्लीट इल्म, जो अल्लाह ताला के इल्म में तो कोई चीज छुपी भी नहीं है ना, सब कुछ अल्लाह ताला को पता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन तक जो है वो मेरे किसी पार्टनर का इल्म पहुंचा ही नहीं, क्योंकि कोई मेरा पार्टनर है ही नहीं, तो इन तक कैसे पहुंचेगा, इन्होंने जो पार्टनर बनाए हुए ये तो बस अजम्पशन की बुनियाद पे बनाए हुए, गुमान की बुनियाद पे बनाए हुए, सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पे बनाए हुए, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमने आपसे पूछी थी वो ये भी कि कुरान मजीद में अक्सर ऐसा भी होता है कि जब उनके पास इन पहुंच गया, जब उनके पास इन पहुंच गया फिर उन्होंने ऐसे किया, तो क्यों उन्होंने ऐसे किया, जब उनके पास इन पहुंच चुका था हक का, उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला पहले इल्म पहुंचाते हैं बंदे के पास हक का, ठीक है, अल्लाह ताला पहले हक का इल्म पहुंचाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि ये मानता है कि नहीं मानता, ठीक है, अगर वो मान लेता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाब कर देते हैं, और अगर वो नहीं मानता तो फिर उसको नाकाम कर देते हैं, उसको सजा देते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ये काम खुद करते हैं, खुद करते हैं ये वाला काम, ठीक है, कभी जो है वो हजरत जी को इस्तेमाल कर लेते हैं इस इल्म पहुंचाने के लिए, ठीक है, कभी जो है वो नजीब भाई को इस्तेमाल कर लेते हैं इल्म पहुंचाने के लिए, कभी जो है वो नुमान भाई को इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी किसी को, कभी जो है वो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है कि ऐसे होता है, ठीक है, तो वो तो भी तो इल्म है ना जो दीवार पे लिखा हुआ है और किसी दलील के साथ लिखा हुआ है, कुरान की आयत है या हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ठीक है, तो अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से पहले इल्म पहुंचाते हैं फिर उसके बाद, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इल्म पहुंचाए बगैर अल्लाह ताला किसी को सजा देने किसी बात के ऊपर जिसको उसको पता ही नहीं है, ये कभी भी नहीं होता, लोग कहते हैं उसको क्यों सजा मिलेगी उसको तो पता ही नहीं, और तुम्हें क्या पता उसको पता नहीं, तुमने सजा देनी है, मैंने सजा देनी है, सजा किसने देनी है? अल्लाह ने देनी है। तो अल्लाह ने पहले इल्म पहुंचाना है, फिर उसके बाद फिर सजा देनी है ना। तो ये खामखा की बातें करते हैं कि उसको क्यों सजा मिलेगी, उसको क्यों सजा मिलेगी, उसको तो पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं। भाई अल्लाह ने सजा देनी है, अल्लाह ने जजा भी देनी है, अल्लाह ने इल्म भी पहुंचाना है, अल्लाह ने ही जो है वो उसका इम्तिहान भी लेना है। ठीक है, इट्स ऑल अल्लाह, इट्स ऑल अल्लाह। ठीक है, अल्लाह है और अल्लाह ही है, अल्लाह ही है। ठीक है, इस बात को कभी भी नहीं भूलें, तब जो है वो फायदा होगा, कामयाब हो जाएंगे, वरना जो है वो किसी को याद करने से कोई फायदा नहीं होता अगर अल्लाह को भूल जाए इंसान। ठीक है, तो फरमाया कि अगर ये लोग तुम पर जोर डालने किसी ऐसे चीज को मेरे साथ शरीक कर देने के लिए जिसका कि इनके पास इल्म ही नहीं है, तो फला तो तेहुमा, तुम इनकी बात मत मानना, इनकी अतात मत करना। लेकिन आगे एक और बात फरमा दी, ठीक है, एक और बात फरमा दी बहुत अहम, व साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन उनके साथ तुम अच्छा बर्ताव करना, ठीक है, नेकी का बर्ताव करना, एहसान का बर्ताव करना, ये मत करना कि वो तुम्हें गलत बात के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ जो है ना वो बदतमीजी शुरू कर दो, तुम भी इनके साथ जो है वो गंदे जुबान इस्तेमाल शुरू कर दो, तुम उनको जो है वो झिड़कना शुरू कर दो, तुम उनको नाउज बिल्ला मारना शुरू कर दो। ठीक है, हरगिज नहीं। साहिब हुमा मारूफन भी अल्लाह का हुक्म है, जिस तरह से फला तो और हुमा अल्लाह का हुक्म है कि तुम उनकी बात नहीं मानना, ये भी अल्लाह का हुक्म है, और साहिब हुमा मारूफन ये भी अल्लाह ही का तो हुक्म है ना। ठीक है, अब कुछ बच्चे कुछ बड़े भी अपने वालदैन के साथ गलत करना शुरू कर देते हैं कि भाई वो दीनदार बन गए, और अब वालदैन तो दीनदार नहीं बने, तो वालदैन ने जाए वो गलत कामों के ऊपर, नहीं तुम दाढ़ी कटवा के आ जाओ, तुम जो है वो टीवी देखो, तुम जो है वो बेपर्दगी करो, बेटियों को मजबूर करते हैं, बेपर्दा नहीं करो, बेपर्दगी करो। ठीक है, तो भाई इसमें उनकी बात नहीं माननी है, लेकिन तमीज के साथ रहना है, अदब तमीज का दामन हरगिज हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि आप जो पर्दा कर रही हैं क्यों कर रही हैं भाई, अपने आप को खुश करने के लिए कर रही हैं, लेट मी डू समथिंग न्यू, लेट मी डू समथिंग न्यू, लेट मी डू समथिंग यूनिक, लेट मी स्टैंड आउट, ताकि मैं पर्दा करूंगी तो मैं दूसरों से मुख्तलिफ हो जाऊंगी, इसलिए आप पर्दा कर रही है, क्यों पर्दा करनी है, क्यों पर्दा करनी है भाई?
अल्लाह को राजी करने के
नहीं, सिर्फ सही वाले जवाब दें, ठीक है, ठीक है, अल्लाह को राजी करने के, लेकिन
क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और
अल्लाह का हुक्म है, इस वजह से पर्दा कर रही है ना, अपने आप को राजी करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, या अपने फ्रेंड्स को खुश करने के लिए तो पर्दा नहीं कर रही, या अगर आपने दाढ़ी उगाई है तो क्यों, ताकि मेरा अच्छा फैशन हो जाए, लोग आजकल दाढ़ी उगा के बड़ा अच्छे लगते हैं, आजकल इन चल रहा है ये मामला दाढ़ी है, क्यों क्यों दाढ़ी रखी है भाई, अल्लाह का हुक्म है, इस वजह से दाढ़ी रखी है। तो अल्लाह का एक हुक्म मान रहे हो तो अल्लाह का दूसरा हुक्म क्यों नहीं मान रहे भाई, साहिब हुमा मारूफन का हुक्म क्यों नहीं मान रहे भाई? ठीक है, जाहिर है जो पर्दा अपनी खुशी के लिए कर रहा होता है, अल्लाह की खुशी के लिए नहीं कर रहा होता, तो फिर तो वो अपना हुक्म मान रहा है ना, अल्लाह का हुक्म तो नहीं मान रहा, तो फिर जाहिर है वो अल्लाह को दूसरा हुक्म भी नहीं मानेगा, जो अल्लाह का पहला हुक्म नहीं मान रहा वो अल्लाह का दूसरा हुक्म भी नहीं मानेगा। ठीक है, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म की वजह से पर्दा कर रही है, या अल्लाह के हुक्म की वजह से दाढ़ी रख रहा है, या अल्लाह के हुक्म की वजह से मौसीकी छोड़ रहा है, उसके लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि वो एक हुक्म माने और दूसरा हुक्म जोड़ दे। इसी वजह से ये कुछ नहीं होता कि गुनाह भी कर रहे हैं और नेकियां भी कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं और नेकियां भी कर रहे हैं, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, ये दोनों साथ साथ नहीं चलते। सहाबा कराम सारे गुनाह छोड़ देते थे, और जो भी नेक बनता है वो सारे गुनाहों से तौबा करता है, आधे गुनाहों से तौबा नहीं करता, 70% गुनाहों से तौबा नहीं करता, 100% गुनाहों से तौबा करना ही तौबा होता है। ठीक है, क्योंकि जब एक हुक्म अल्लाह का माना तो फिर सारे अल्लाह के हुक्म माने, और एक हुक्म तोड़ा इसका मतलब यह है कि आप सारे हुक्म तोड़ रहे हैं। ठीक है, एक हुक्म तोड़ रहे हैं, सारे हुक्म तोड़ रहे हैं, एक हुक्म मान रहे हैं, सारे हुक्म मान रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आधे मान रहे हैं आधे छोड़ रहे हैं, आधे छोड़ रहे हैं आधे मान रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं कमजोरी की वजह से, तो उसके ऊपर रो तो रहे हैं ना भाई, राइट, उसके ऊपर रो रहे हैं, उसके ऊपर नादिम हो रहे हैं, तो ये नादिम होना भी तौबा ही है। ठीक है, लेकिन ये कहना नहीं ये नहीं मानूंगा ये मानूंगा, ये तो तौबा हरगिज हरगिज नहीं। ठीक है, एनीवे ये बात हो गई। अच्छा, फिर सहाबा कराम साद बिन अबी वक़ास के जन्नती होने की बशारत में वाकई हजरत ने फरमाया था कि हाँ ये बस वाकई करके आज की क्लास खत्म कर देते हैं। कि देखें सहाबा में कितना शौक था जन्नत का, ठीक है, और नेकियों को सीखने का कितना शौक था कि एक दफा सहाबा बैठे हुए थे सारे के सारे, तो नबी अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए थे कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर तुम किसी जन्नती आदमी को देखना चाहते हो ना तो उस शख्स को देख लेना जो अभी आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ी देर में तो सात दिन अभी वकास होता है अंदर दाखिल हो, अच्छा बैठ गया करके, फिर अगले दिन इसी तरीके की मजलिस में बैठे हुए थे तो फिर फरमाया अगर तुम किसी जन्नती शख्स को देखना चाहते हो तो उसको देख लेना जो अभी दाखिल होने वाला है। तो थोड़ी देर में फिर सात दिन अभी वकास होता है दाखिल हुए, ठीक है। तो इससे नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नती होने की बशारत भी फरमा दी। तीसरे दिन भी बिल्कुल यही मामला हुआ, ठीक है। तो अब जो है ना हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस रजी अल्लाह तआला, आमिर बिन आस रजी अल्लाह कितने मशहूर सहाबी हैं जो मिस्र के फातह भी कहलाते हैं, उनके जो बेटे थे यानी आप जैसों की जितनी उम्र होगी उनकी तकरीबन, तो अब्दुल्ला उनका नाम था, वो कह सोचने लगे कि यार ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से इनको जन्नत की बशारत दी है। तो ये साथ में वकालत के पास गए, ये नहीं बताया, अच्छा उनको तो पता ही नहीं, वो तो आकर के बैठ गए, ठीक है, तो के उनको ये नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम उनके बारे में ये फरमा रहे थे, वो तो बाद में आए ना। तो अब ये अब्दुल्ला जतान जो है सादत के पास गए और उनसे कहने लगे कि मुझे ना आपके साथ थोड़ा दिन ठहरने की अगर इजाजत मिल जाए, फलाना फलाना मसला है मेरे साथ, मैं घर नहीं जा सकता, तो जिस तरह की उन्होंने बात करी तो मुझे जरा अपने पास ठहरने का मौका दे दीजिए, ठहरा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ मेरे घर में, क्या मसला है, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये जा करके उनके पास 3 दिन ठहरे, 3 रातें गुजारी, और जाहिर दिन में फिर कामकाज भी साथ साथ रहते होंगे। तो कहते हैं कि मैंने 3 दिन 3 रात कोई ऐसा काम नहीं देखा साधारण की जिंदगी में कि जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की चीज हो, बिल्कुल कोई अजीब, कोई जैसे वो पता नहीं सारा वक्त जो है वो नमाज पढ़ते रहते थे, ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा, ठीक है, या जो है वो हर वक्त जो है सोने का ढेर उठा करके लोगों को बांटते रहते, कोई ऐसी चीज नहीं देखी मैंने। तो मैं हैरान हुआ कि फिर उनको जन्नत की बशारत नबी अलैहिस्सलाम इस अंदाज से क्यों दे रहे हैं 3 दफा लगातार। तो पूछा कि आपका, मैं असल में यूं इस वजह से आया था आपके पास, मतलब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं था, मैं तो ये देखने के लिए आया था आपका कौन सा वाला अमल है। तो उन्होंने फरमाया कि भाई मुझे तो अपना कोई अमल नजर नहीं आता ऐसा। तो सहाबा की बात ही ये थी कि अच्छा मजे की बात है, अभी कराची में भी किसी से बात हो रही थी तो उनकी बातों में भी फिर उनको खैर समझाया, तो यही कहा कि जो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है ना और अपनी बड़ी तारीफें करता रहता है, मैं आपने गर्दाने पढ़ी, गर्दान में कितने सीगे होते हैं, 14 सीगे, फाला फाला फालू फालत फालता फालना फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुना फालतू फालना ये फलू ये फलाना ये फलूना लय फलना, 14 सीगे होते हैं, और 14 सीगों के अंदर जो है ना वो लफ्ज बदलते रहते हैं बदलते रहते हैं बदलते रहते हैं। तो ये तो है, ये होती है फेल की गर्दान, एक होती है मैं की गर्दान, ठीक है, मैं की गर्दान, ये मैं की गर्दान किसी को आती है, कोई सुनाए तो जरा मैं की गर्दान है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाए जिसको भी आती है, 14 सीखे होते हैं ना, तो वो ऐसे शुरू होते हैं, मैं, इसमें हर सीगे में मैं होता है बस, इसको ये बदलता नहीं है, इसमें सर्फ नहीं होता, ये कांस्टेंट गर्दान है, मैं की गर्दान, ठीक है। तो कुछ लोग बड़े नेक होते हैं माशाल्लाह, उनकी मैं की गर्दान खत्म नहीं होती। जी
पहले 3 दिन हो कर सकते हैं सिर्फ फाला 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 लोग, और मैं था मैं हूँ
मैं था मैं हूँ मी माई सेल्फ एंड आई, अंग्रेजी में कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैं की गर्दान जो होती है ना, ये इस बात की दलील होती है कि इस बंदे ने तौबा नहीं करी है, ठीक है, इस बंदे ने तौबा नहीं करी है, और ये बड़े बड़े गुनाहों के अंदर मुब्तला है सर, ठीक है। तौबा की दलील ही होती है कि मैं की गर्दान खत्म हो जाती है, ठीक है, मैं की गर्दान खत्म हो जाना ये तौबा की दलील है, और जिसकी मैं की गर्दान खत्म नहीं हुई वो कितने ही बड़े बड़े फजाइल और अपने क्या क्या कुछ, मैं ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ये सब वो, उसका मतलब ये है कि साहब जो है ना अभी तौबा से महरूम है, या साहबा जो है वो तौबा से महरूम है। थी नहीं वो तो अपने ऐबों की खबर तो वो कल वाली हो गई, चलो साहब ने सुनाया था। लेकिन एक और शेर है इसके ऊपर, मसहफी वाला शेर, कि मसहफी हम तो समझे थे होगा कोई जख्म तेरे दिल में, तो बहुत काम रफू का निकला। ठीक है, तो जब वो तौबा करते हैं ना तब पता चलता है कि भाई दिल तो फटा, पुराना दिल था, इतना खराब हमारा दिल हुआ हुआ था, अभी तो बहुत इसको करने की जरूरत है। ये तौबा के बाद होता है, तौबा से पहले क्या होता है, थोड़ा कुछ कभी गलती हो गई हो उससे बस, वरना तो मैं ठीक हूँ, सब सेट है मेरा, सब ठीक है मेरा। ठीक है, तो ये होता है। तो सहाबा ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, सहाबा की मैं की गर्दान नहीं थी, उनको अपने अच्छे अफाल नजर ही नहीं आते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई फेल मैं नहीं करता। मैं कहा नहीं, कुछ तो होगा ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने आपके लिए ये वाली बात कही है। तो उन्होंने फिर एक ऐसी बात कही कि जिसके बारे में हर इंसान को पता होता है, ठीक है, जिसके बारे में हर इंसान को कंफर्म पता होता है, वो क्या, कि उसकी दिल की कैफियत क्या है। ठीक है, उसके दिल की कैफियत क्या है, इसके बारे में जो है ना वो धोखा शोका नहीं लगता। यानी दिल की कैफियत क्या होती है, मोहब्बत, ठीक है, नफरत, बुग़्ज़, ठीक है, एहतराम, किसी के लिए एहतराम की कैफियत है आपके दिल के अंदर। तो अगर एहतराम की कैफियत है तो अब आप डिसीव नहीं हो सकते कि क्या वाकई मेरे दिल में उसके लिए एहतराम की कैफियत है या नहीं। एहतराम भाई आपके अंदर है एहतराम की कैफियत, तो है एहतराम की कैफियत, यू नो इट। ठीक है, किसी के लिए मोहब्बत है, यू नो इट कि आपके दिल में मोहब्बत है उसके लिए। किसी के लिए आपके दिल में नफरत है, बुग़्ज़ है, यू नो इट कि आपके दिल में नफरत है, बुग़्ज़ है। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म होती है। इसी वजह से सहाबा ने एक दफा नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तो क्या दर्जात हैं, क्या, जैसे हम अपने हजरत जी के वाकया सारे सुन रहे हैं ना, तो अब वही मामला है जो कल आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि वही शेर याद आता है कि आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तो आप तो हमारे जो बड़े हैं वो तो गोया के लौह कलम तक पहुंचे हुए हैं, और हम तो वो ऐसे सितारों को देख रहे हो अभी कहां भाई है, हम वहां कैसे पहुंचेंगे, हम आपसे कैसे मिलेंगे, हमारी आपसे कैसे मुलाकात होगी, हम तो बहुत दूर, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई अमल ही नहीं। यही हाल सहाबा का भी होता था। ठीक है, जैसे हम अपने हजरत के बारे में सुनते हैं और ऐसी सोचते हैं, तो वही बात जो है वो सहाबा भी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी सोचते थे कि आपका तो क्या मुकाम, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ताला ने जो है वो आपको ये मुकाम दिया, अपनी जियारत करवाई वहां बुला करके अर्श के पास, और ये सब कुछ हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो दुनिया में तो हम आपको देख लेते हैं, हम आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, मरने के बाद तो आपका जो दर्जा होगा, हम कैसे आपसे मिलेंगे, हम कैसे आपको देखेंगे। ठीक है, तो बड़े परेशान साहबा। तो नबी अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, जवाब नहीं दिया। फिर बाद में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर के आप सबको बताया कि आप उनसे कह दीजिए अलमरु मा मन अहब, कि बंदा उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है, मोहब्बत। ठीक है, तो सहाबा फरमाते हैं कि उस दिन हमें ये बात सुन करके इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जितनी खुशी हमें शायद सिर्फ इस्लाम लाने के दिन हुई थी, उसके बाद कभी इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि हमें ये बात पता थी कि हमारे दिल में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मोहब्बत है। हमें अपने आमाल के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, और हमारे आमाल थे ही नहीं कुछ, ठीक है, लेकिन दिल की मोहब्बत के बारे में हमें पता था कि ये तो पक्की नबी अलैहिस्सलाम के लिए है। ठीक है, क्योंकि दिल गवाही देते हैं ना, उसकी तो गवाही झूठी नहीं होती। तो दिल की कैफियत ऐसी होती है। तो साद रतान, उन्होंने फिर अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रतान को यही जवाब दिया कि शायद ये रीजन हो कि मैं अपने दिल में किसी मुसलमान की बुराई नहीं पाता। क्या मतलब बुराई नहीं पाता, ठीक है, और ना ही उसके लिए बुराई का इरादा रखता हूं, और ना मैं उसके खिलाफ कोई बुरी बात कहता हूं। इसका मतलब क्या है, जुमला तो सुन लिया, मतलब ही तो बताएं कि मैं अपने दिल में किसी मुसलमान की बुराई नहीं पाता, ना उसके लिए कोई बुराई का इरादा रखता हूं, ना उसकी कोई बुरी बात कहता हूं। मतलब क्या है इसका, ठहर जाए, आप ही तीन उठा रहे हैं, कोई और चौथा? इसका मतलब ऐसे बहुत आसान है, और खाली मतलब बयान करना आसान नहीं है, बल्कि इस मतलब पे अमल करना और खुद ऐसा बन जाना भी बहुत आसान काम है। तो वो क्या है जी साथ भाई? तो कुछ
जी दूसरों को जज जज नहीं करते और उनकी बदगुमानी नहीं करते, मतलब कोई भी मुसलमान का ऐसा कोई बुरा नहीं सोचते कि वो आगे करेंगे या फिर उन्होंने किया है या फिर अब वो करेंगे आगे चल सब।
बदगुमानी नहीं करते किसी के बारे में, नहीं से काम नहीं चलेगा। चले इरफान भाई यार,
हर किसी को अपने से बेहतर समझो।
बिल्कुल हर किसी को अपने से बेहतर समझना ना, ये भी इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम। चले दुल्ला भाई आप बताओ।
किसी के लिए अपने दिल में कीना रखना।
कीना ना रखें, चले ठीक है, दैट्स क्लोज। और अब्दुल्ला तीसरे, अब्दुल्ला
गुस्से गुस्से और रोग निकालना।
गुस्सा और
दोस्त
बुग़्ज़। अच्छा, गुस्सा और बुग़्ज़ निकाल देना, और
सच से कहा
हसद से पाक। ठीक है, हसद भी क्लोज है वैसे। और आप क्या कह रहे थे? एक का तीन से एक कप। हाँ अच्छा, एक कप बता था। ये तीन बातें जो कि ना दिल में बुराई सोचते थे, ना बुराई जो है वो इरादा करते थे, और ना जो है वो बुराई बोलते थे, तो एक का पता है तो वो बता दे। बुरा नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं? एक हदीस मुबारक सुनी है, छोटी तरीन हदीसों में से है, क्या है वो?
मिला
नहीं, ये इसमें वो वाली तो नहीं। अच्छा, अद्दीनुन नसीहा, अद्दीनुन नसीहा, के दीन तो सरासर खैर ख्वाही है। खैर ख्वाही, खैर ख्वाही का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में अच्छा सोचना से मुराद ये नहीं कि वो शराब पी रहा है तो ये सोचना है कि नहीं वो शराब नहीं, वो रूह अफ़ज़ा पी रहा है। राइट कोई जो है वो गालियां दे रहा है तो नहीं, गालियां दे रहा है वो तो तिलावत कर रहा है। ये नहीं मतलब है अच्छा सोचने का। क्या मतलब? कि बस किसी तरीके से उसका नुकसान ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे, किसी तरीके से बस उसको फायदा पहुंच जाए। अगर वो कोई नुकसान कर रहा है तो वो करना छोड़ दे, अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके नुकसान से बच जाए। ठीक है, चाहे दुनिया का नुकसान हो रहा हो, चाहे आखिरत का नुकसान हो रहा हो, चाहे मादी नुकसान हो रहा हो, जैसे बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है तो उसके अब फिक्र हो जाना, यार उसको बिजनेस का लॉस हो रहा है, किस तरह मैं उसको उसके बिजनेस के लॉस से कैसे बचा लूं, या आखिरत का नुकसान हो रहा है कि अगर वो बुरे सोहबत में जा रहा है, बुरे माहौल में जा रहा है, या गुनाह के काम कर रहा है, किसी तरीके से बस जो है ना वो गुनाह छोड़ दे, गुनाह से तौबा कर दे। ठीक है, तो हर एक के लिए खैरख्वाही का जज्बा होना, किसी के लिए बदख्वाही का जज्बा ना होना, किसी के लिए बदख्वाही कि यार क्या है, चाहे जहन्नुम में मुझे क्या, मैनू की मुझे क्या, नहीं अच्छा ही है उसको और सजा मिलेगी, वो भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं करता ना, तो चलो अच्छा है, लॉस होगा ना पता लग जाएगा उसको। जैसे कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, क्या हमारी बात नहीं सुनी तो अब जो है ना वो गलत रास्ते पे जाने कहते हैं, हाँ अच्छा हुआ उसको सजा मिलेगी ना, तब उसको एहसास होगा उसने मेरे साथ क्या किया था। कितना आम है ये हमारे दरमियान, नहीं हमें गुस्सा आता है ना किसी के ऊपर तो हम फौरन सोचना शुरू कर देते हैं, यार किसी तरह उसको सजा मिल जाए ताकि उसका एहसास हो जाए कि उसने जो मेरे साथ किया था ना, ही हैज टू पे द प्राइस फॉर इट। ये हम करते हैं, ये वी आर वेरी गुड एट इट एक्चुअली, वी आर वेरी गुड एट इट एक्चुअली, कि हमें जो गुस्सा आता है और फिर हम बदख्वाही करना शुरू हो जाते हैं अगले बंदे के लिए। ठीक है, तो खैरख्वाही क्या है कि नहीं किसी का बुरा नहीं सोचना है, चाहे वो मेरे साथ अच्छा है चाहे मेरे साथ बुरा है। ठीक है, तो साथ में नबी वकास सुल्तान जो है वो ऐसे किया करते थे, खैरख्वाही दीन नसीहा, उन्होंने यही बात लिखी थी, डोंट एक्सपेक्ट हिम टू डू एनीथिंग रॉन्ग और फॉरगिव हिम इफ ही डज। हाँ ये भी चले ये भी पार्ट पार्शली इस तरह कह सकते हैं, मैं सीगा नहीं बता बदलता, हाँ मैं का सीगा नहीं बदलता। ठीक है, यहाँ पे हम आपकी क्लास खत्म करते हैं। ताला बात की समझ अमल की तौफीक हम सबको अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम, असर की नमाज पढ़ लेते हैं फिर।
Recording stopped.